बैठे रहेंगे और हम वो बहुत सुंदर क्लास भी सुनेंगे और रुचि से उस प्रोजेक्ट के अंदर भाग लेकर पुरुषार्थ भी करेंगे।
बाबा बसायो किरणों की बाहों में हमको समालो
बाबा प्यारे
ओम शांति। जैसे कि आपको बताया कि अभी एक बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट हमारे बीच में रखा जाएगा, उसके लिए परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अलका दीदी, जो कि वर्तमान समय मुंबई में कल्याण सेवा केंद्र के इंचार्ज हैं और आपके सानिध्य में अनेक सब सेंटर्स और गीता पाठशालाएं चलती हैं। आप स्पार्क विंग के महाराष्ट्र के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप बाल्यकाल से ही बाबा के ज्ञान में हैं और आप वो सर्वभाग्यवान आत्मा हैं जिन्होंने बाल्यकाल से ही सभी बड़ों की, दादियों की, दीदियों की विशेष पालना ली, उनके अंग संग रहे। हांजी का पाठ हम दीदी के व्यक्तित्व में देखते हैं। आपके एक एक शब्द से मधुरता झलकती है। आपकी नियम संयम और मधुर पर ओजस्वी वाणी सबके दिलों को छूती है। ऐसे आदरणीय अलका दीदी जी, और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका विषय है अंतिम समय की तैयारी, टचिंग, कैचिंग और मैचिंग। जो बाबा कहते हैं कि अंत में क्या आपको टच होगा, क्या आपको कैच होगा और क्या आपको मैच करना है। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि हम यहाँ किसकी तैयारी के लिए आए हैं? अंतिम समय की तैयारी ही हम कर रहे हैं। तो कैसे हम अपने इनर साइलेंस से अंतिम समय की तैयारी करते हुए और बाबा की टचिंग, कैचिंग, मैचिंग्स को समझ सके, उसके ऊपर बहुत गहराई से दीदी जी प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य हैं। इस प्रोजेक्ट में दीदी के साथ जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारी बहुत ही स्नेही सहयोगी तनुजा बहन, जो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से गहरे विषय को भी बहुत हल्का रमणीक रूप में सबके सामने रखती हैं। तो ऐसे गंभीरता और रमणीकता का वो कॉम्बिनेशन है। तो तनुजा बहन दीदी जी के साथ इस प्रोजेक्ट में पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं। तो तनुजा बहन आप सबसे थोड़ी देर में रूबरू होंगी, तब तक हम सुनते हैं आदरणीय अलका दीदी जी को। शांति।
ओम शांति। तो आज का जो हमें विषय मिला हुआ है, वैसे ये विषय भी हमें इसी समय पर और अचानक, बाबा कहते हैं अचानक एवर रेडी, तो ये प्रोजेक्ट भी हमें अचानक और एवर रेडी का पाठ पढ़ा रहा है। और ये जो टॉपिक है, हम सभी को विशेष हमारी प्यारी मातेश्वरी, जो हम सभी के सामने एक पुरुषार्थम एग्जाम्पल रहे। और मम्मा का एक बहुत सुंदर महावाक्य था कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और इसी महावाक्य के आधार से जैसे मम्मा ने अपना पुरुषार्थ किया, तो उससे हम अपने आप में भी देखे कि मम्मा ने जब ये वाक्य जीवन में धारण किया तो इसमें मम्मा के पुरुषार्थ में जो तीव्रता आई, मम्मा अपने संपूर्णता के ओर पहुंच गई। तो ऐसा उस महावाक्य के अंदर कौन सी बातें छिपी हुई थी जिसने इतना तीव्र पुरुषार्थ मम्मा से कराया? तो हमें भी अंतिम समय के ओर आना ही है, तो हमें भी अपनी तैयारी संपूर्णता की करनी है, संपन्नता की करनी है, तो हमें भी इसका प्रयोग करते हुए अपने आप में देखना है कि कैसे बाबा ने, कैसे मम्मा ने अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचाया। क्योंकि बाबा में सदा यही कहते हैं, जैसे बाबा मम्मा ने पुरुषार्थ किया है वैसा ही पुरुषार्थ आपको करना है। जैसे उन्होंने नंबर वन लिया है आपको भी वैसे ही लेना है। तो हमारे सामने बाबा ने ऐसा सुंदर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल जीवन का, हर एक महावाक्यों को प्रैक्टिकल जीवन में ला करके उसकी रिजल्ट जो है वो बाबा मम्मा की जीवन है। और वही शिव बाबा के महावाक्य जिसको ही बाबा ने साकार रूप में अपने जीवन में लाया है, हमें भी वही पढ़ाई सब कुछ मिली हुई है, तो हमें उसको सिर्फ फॉलो करना है। तो जैसे हमारा फॉलो फादर का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लगातार उस प्रोजेक्ट के द्वारा अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसी को हम अब आगे कंटिन्यूस करेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ी वैरायटी रीति से, थोड़ा कुछ मनन चिंतन हम सभी का अपने आप के अंदर चलाने के लिए। ये सब हमारे लिए प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, ताकि हम कुछ अपने बुद्धि को चलाएं, हम भी खुद माखन तैयार करें। ऐसे तो हम बने बनाए टाइम पर पहुंचे हुए हैं, माखन तैयार है। कितने न दादियों ने, महारथियों ने अपने विचार सागर मंथन करके प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा हम सभी के सामने पुरुषार्थ की नींव रखी, ऐसे रखी है कि हमें सिर्फ उसको करना है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, ये करो तो ये रिजल्ट सामने है। तो इतना सुंदर समय हमारे सामने है, फिर भी हमें भी बाबा कह रहे कि बच्चे आपको भी अपने आप थोड़ी सी ये मेहनत करके उस माखन को अनुभव करना है कि माखन निकालना कैसे है। क्योंकि जहां हम मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद का वो जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। तो ये भी ऐसे एक टॉपिक है जो हम सभी के बुद्धि के अंदर ये टॉपिक सुनते ही आता है। अंतिम समय के लिए आज हमें क्या तैयारी करनी है? जैसे हम देखते हैं कि हम पढ़ाई पढ़ते थे, पूरा साल भर पढ़ाई पढ़ने के बाद उसका भी अंतिम समय आता था, माना हमें एग्जाम देनी होती थी, हम पेपर देते थे, तो उसके लिए हमारी तैयारी जो होती थी वो कितने समय से चलती थी। और उसके पहले भी हम फाइनल एग्जाम के पहले पहले 3 मई, 6 मई ऐसे अलग अलग टाइम पर हमारे एग्जाम होती है, उसके पहले भी हमारी 15-15 दिन के बाद टेस्ट होती है। तो ऐसे हम परीक्षाएं देते देते फाइनल परीक्षा में अपने आप को हम अच्छी तरह से सफलतापूर्वक पास करके निकलते हैं। तो ये भी एक पढ़ाई हम बच्चों की, और इस पढ़ाई के अंदर भी हमें पास होना है, तो हमें भी एक दिन के पुरुषार्थ से या टाइम पर पुरुषार्थ करके हम अपने आप को अंतिम समय के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें इसी प्रकार से अपने आप की तैयारी करनी होगी। और जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे स्कूलों में 15-15 दिन के बाद टेस्ट लेते हैं, वैसे हमें भी अपने पुरुषार्थ की टेस्ट लेने की आवश्यकता है कि हमने जो पुरुषार्थ किया है, हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसका मेरे जीवन में कोई रिजल्ट निकल रही है। सिर्फ हम ज्ञान सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, लेकिन उसकी जो रिजल्ट है वह है हमारा परिवर्तन। तो वो परिवर्तन हमारा रिजल्ट हम अपने आप को देखने के लिए भी अपने आप को हम साक्षी कर करके वो रिजल्ट को हम देखें कि कौन सी परिस्थिति में, किस स्थिति में मुझे इस ज्ञान और योग का अभ्यास क्या सहयोग दे रहा है, मैं उसका क्या प्रयोग अपने जीवन में कर करके अपनी स्थिति को बना रही हूँ। क्योंकि खजाना बहुत मिला हुआ है और हमारे सामने जो भी बातें हैं, अब छोटे छोटे रूप में भी हो, लेकिन उसमें भी जैसे हमें प्रैक्टिकल उसमें से पास होने के लिए एक जैसा एक मौका मिलता है कि ऐसे समय पर हम कौन से ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करके कौन से परिस्थिति में से हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, तो इसका विशेष हमें प्रयोग करना है। तो ये जो टॉपिक्स से रिसर्च के हिसाब से हमें अपने जीवन के अंदर उसको नोट करना है, क्योंकि हम करते पुरुषार्थ सभी है, लेकिन पुरुषार्थ करने के साथ साथ क्या किया था और क्या किसकी रिजल्ट क्या निकली, तो इसका हम अभ्यास नहीं करते, इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सी शक्ति कौन से प्रयोग से या कौन से योग के तरीके से मैंने आत्मा ने आत्मसात की है, या कौन सी पॉइंट्स को यूज करते हुए मैंने अपने अंदर कोई परिस्थिति पर विजय प्राप्त की हुई है। तो वो जो अभ्यास है हमारा, वो अभ्यास हमें इसमें नोट करना है, क्योंकि कर तो रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास दवाइयां होती है कि इस दवाई से ये इलाज होता है, इस दवाई से ये बीमारी खत्म होती है, तो क्या वैसे हमारे पास उस प्रकार से अनुभव है कि ये पॉइंट्स हमने यूज करने के कारण हमारा ये संस्कार परिवर्तन हो गया, या ये पॉइंट्स के कारण हमारे अंदर ये अवगुण खत्म करने में मदद मिली? तो ये हमें इस प्रकार से अपने रिसर्च की ये अभ्यास करना है, और इस पॉइंट्स के अंदर हमें लक्ष्य जैसे अंतिम समय का हम कहें, तो अंतिम समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, जैसे स्कूलों के हिसाब से हम सोचेंगे, पढ़ाई के हिसाब से, कि हमारा पूरा पोर्शन जो है वो पूरा होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, उसी प्रकार से उसका मनन चिंतन, उसका इम्पोर्टेंस सारा हमारे बुद्धि में आना चाहिए, ताकि हम एग्जाम के लिए जाएंगे तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी होगी। तो इसी प्रकार से हमें भी इस ईश्वरीय पढ़ाइयों में भी अपने आप को तैयार करना है। तो बाबा ने हमें चार सब्जेक्ट दिए हुए, और इन चारों सब्जेक्ट हम सभी के लिए ये अंतिम समय तक तैयार होने के लिए मिले हुए हैं, और चारों सब्जेक्ट का साथ साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी है, जो हम सभी ब्राह्मण जीवन के अंदर अनुभव भी करते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट को लेकर के हम चलते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर उसका असर जरूर पड़ता है। अगर हम सिर्फ ज्ञान सुनते हैं और योग में हमारी स्थिति कच्ची है, तो हम देखते हैं ज्ञान की धारणा हमारी बराबर नहीं होती है, माना हमारा एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ डिपेंड करता है, और चारों ही सब्जेक्ट को लेकर के हम चलते हैं रोज की दिनचर्या के अंदर, तो ये हमारे जीवन को संतुलित करता है, या हमारी शक्तियों को, हमारी गुणों को हमारे साथ इमर्श रूप में कार्यरत रहता है। तो इसलिए बाबा ने जो हमारा सुप्रीम टीचर है, श्री बाबा ने हमें ये चार सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो चारों सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है। जैसे मैं सदैव यही कहती हूँ कि कितना भी कोई बिजी हो, सेंटर पर आते हो या कहीं यज्ञ में हम आते हैं, तो कम से कम हम अपने जीवन के लिए अपने आवश्यकता के हिसाब से हम कुछ तो भी यज्ञ सेवा भी अपने आप में दिलाने का कुछ चार्ट अपना रखना है। जैसे हम सेंटर पर जाते तो एक 15 मिनट तो भी क्यों ना हो हमारे दिनचर्या में, हम 15 मिनट में भी यज्ञ में कर्मणा सेवा क्या देते हैं, उसका भी हमारा चार्ट जैसे रोज का होना चाहिए। हम ज्यादा नहीं दे सकते 15 मिनट, और वो भी हम अपने खुशी से अपनी सेवा रोज की सेलेक्ट कर लेवे कि 15 मिनट मुझे मिलते हैं, 15 मिनट में मैं ये यज्ञ सेवा करके अपना चार्ट बना सकती हूँ। जैसे हम योग का बनाते हैं, जैसे हम सेवा का भी बनावे, उसी प्रकार से हमारे मनसा सेवा का, जो बाबा ने हमें खास कहा है कि आप सारी दिन की दिनचर्या में कोई ऐसा टाइम फिक्स रखो जो आपकी दिनचर्या के हिसाब से भी हो, और उस समय पर आप फ्री हो, और आप उस समय पर विशेष मनसा सेवा भी करो। तो ऐसी जब हमारी पूरी दिनचर्या बनी हुई होती है, जिसमें हर सब्जेक्ट हमारा कवर होता है, तो उसकी जो मार्क्स है हमें पुरुषार्थ के लिए बहुत सहयोग देती है। तो हमें इसके लिए ध्यान रखना है कि ये जो समय हमारा, आज का समय हमारे हाथ में है, और इस समय पर ही हम बच्चे ये सारी कमाई कर सकते हैं, ये कमाई का समय चल रहा है, अंतिम समय हम कमा नहीं सकेंगे, अंतिम समय की भी कमाई को हम यूज करेंगे। जैसे बाबा ने कहा उस समय पर परिस्थितियां ऐसी होंगे जो हम योग लगाने के लिए बैठेंगे लेकिन परिस्थितियां हमको प्रभावित करेगी और हम उस समय पर योग नहीं लगा सकेंगे, लेकिन उसके पहले हमने जो योग करके अपने जीवन के अंदर शक्तियों को जमा करके रखा हुआ है, योग का बल जमा किया है, वो उस समय पर हम यूज करेंगे, उस समय पर जमा नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे आईवेल के लिए हमें बाबा ने बहुत सारे समय प्रति समय इशारे दिए हैं कि आईवेल के लिए आपको क्या क्या करना होता है। जैसे बाबा ने बच्चों को कहा आईवेल के लिए योग का बल जमा करके रखो, ऐसे बाबा ने कहा आईवेल के लिए आपको अपना धन का भी बाबा ने हिसाब दिया था कि आईवेल के लिए कुछ धन भी जमा करके रखो। और उसके बाद बाबा की ये भी मुरली चली है कि बच्चे आईवेल के लिए भी अभी कुछ धन जमा नहीं करो, अभी सारा सफल करो। मना ये समय प्रति समय जो बाबा के इशारे हमको हर चीज के लिए मिले हुए हैं वो उसी लिए है कि कोई भी चीज से हम अपने आप को खाली न रखें, हमारी हर प्रकार से ईश्वरी कमाई हो सके, कोई भी चीज से हमारी जो भविष्य की कमाई है वो कमाई करने में हम कहीं कम न रह जाएं। इसलिए बाबा के मुरलियों में हमें समय प्रति समय अलग अलग शिक्षाएं भी मिलती हैं, श्रीमद भी मिलती है। अब हमें ये जो पुरुषार्थ करना है इस प्रोजेक्ट में इस प्रकार से लेने का सोच रहे हैं, आप भी इस पर विचार करना। आज तो हम सभी भी सब्जेक्ट पर विचार करने के लिए बैठे हैं और इसकी रूपरेखा भी आप सभी को मिलकर के आपके विचारों के द्वारा ही बहुत सुंदर रीति से बनेगी। तो इसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि अंतिम समय के लिए हमें टचिंग की आवश्यकता होगी, जैसे बाबा ने कहा है कि अंतिम समय पर एक ही ट्रेन लास्ट में चलेगी और उस ट्रेन के लिए भी जिसकी लाइन क्लियर होगी उसी को ही टच होगा और जिसका बुद्धि और कहीं पर नहीं जाएगा वही उस ट्रेन में बैठ सकेगा। बाबा ने यहाँ तक भी उस मुरली में कहा है, टीचर्स बहनों से बात की थी बाबा ने, तो बाबा ने कहा टीचर्स अगर उस समय पर कोई अनन्य जिज्ञासु को याद करेगी कि ये बहुत मददगार थे तो इनको मैं बोलो कि इस समय पर ये लास्ट ट्रेन है और आप चलो, बाबा ने कहा उतना संकल्प भी आएगा और उतना आप करने जाओगे तब तक आपकी वो ट्रेन चली जाएगी। तो इसलिए आपको भी किसी को याद नहीं करना है लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी टचिंग के द्वारा उस घड़ी आपको वो कदम उठाना होगा जो आपको टच हुआ है और वही आपके लिए अंतिम सुविधा होंगी, अंतिम आपके लिए वो मदद होंगी। तो जैसे बाबा हम बच्चों को कह रहा है कि अंतिम समय आपको टचिंग को कैच करना होगा, तो आज हम देखते हैं कि बाबा अभी भी जिस समय पर हम कई प्रकार के प्रॉब्लम्स में होते हैं उस समय पर अगर हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, शांत करते हैं, प्रॉब्लम के प्रभाव में नहीं लाते हैं लेकिन हम बाबा के साथ बाबा के ऊपर जिम्मेवारियां डाल करके एकदम लाइट हो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि बाबा हमें टच करवाते हैं, उन परिस्थितियों में से हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना है। तो ये आप सभी के भी अनुभव होंगे लेकिन जब प्रॉब्लम के प्रभाव में आ जाते हैं तब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है और तब हम कहते हैं कि बाबा मदद क्यों नहीं कर रहा है, बाबा कुछ प्रेरणा नहीं दे रहा है या बाबा से कोई मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि बाबा हमारे हर प्रश्नों का उत्तर देता है लेकिन उसको लेने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए और वो तैयारी हमको आज से ही अभी से ही करनी है और हमें इसके प्रयोग भी करना है। जैसे कल हम दादी जानकी जी के अनुभव सुन रहे थे दीदियों के द्वारा कि दादी कैसी विदेश में थी और यहाँ बाबा से मुलाकात कर रही थी और बाबा दादी से मुलाकात ऐसे ही कर रहे थे जैसे दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे। कल जयंती दीदी बहुत सुंदर बात सुना रही थी कि मैं बाबा को कह रही थी कि दादी आई नहीं है और इस बार दादी के लिए बाबा कुछ कहे तो मैं दादी को जाके सुनाऊं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची से तो मैं रोज ही बात कर लेता हूँ, बच्ची मेरे से बात कर लेती है। मना हम देखते हैं कि बड़ों ने क्या पुरुषार्थ किया था कि जो इनकी इतनी लाइन क्लियर थी इतनी स्पष्ट रीति से बाबा के और उनकी बातचीत हो सकती थी। जब दादियां कर सकती है तो हम सभी के लिए भी करने के लिए, तो वो तो वही ज्ञान है, वही योग है और वही बाबा है। बाबा ने कहा मैंने किसी को भी नंबरवार कुछ भी नहीं दिया है, मैंने सभी को देते समय एक जैसा ही सब कुछ दिया हुआ है। जब हम देख रहे हैं कि बाबा मम्मा दादियां जो पुरुषार्थ कर चुकी है, तो वो दादियों को बाबा को सबको बाबा ने वही दिया था जो हमें भी दिया हुआ है, फिर वो हमारे जीवन में क्यों नहीं यूज हो रहा है? तो वो हमें देखना है कि हम क्यों नहीं वो अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन करना है, जिसके लिए दादी जी की ये बातें थी सच्चाई और सफाई, कि हमें सच्चाई के साथ सफाई की आवश्यकता है, और सफाई अगर नहीं होती है तो हम क्लीन नहीं होते हैं, तो हमारी कैचिंग पावर, टचिंग पावर एक काम नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पहले हमारे अंदर की सफाई, और सफाई में भी जैसे बाबा इस हफ्ते में हम बच्चों को बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा किसी के प्रति आपके मन में घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या, द्वेष है, ये भी सब क्या है, इसको भी हमें सफाई करनी है। ये भी हमारे अंदर गंदगी है और इस गंदगी के कारण हमारी टचिंग जो होंगी बाबा से, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमने कैच करना चाहिए, वो नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें सफाई की भी बहुत आवश्यकता है। तो कई प्रकार के पुरुषार्थ इसके बीच में हमको करने होंगे। तो वो क्या क्या पुरुषार्थ हमको करना है वो हमें इस प्रोजेक्ट में सोचना है, कि हमें अपने उन्नति के लिए, अपनी इन स्थितियों को बनाने के लिए हरेक की अपनी आवश्यकता भी हो सकती है और हरेक के अपने अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के अनुभव एक दूसरे को हमें सहयोग भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमें ये अभ्यास करते हुए उसकी रिजल्ट देखनी है कि कैसे हम अपनी सफाई की प्रोसेस शुरू करें, अपने अंदर के वो अवगुणों को निकालें जो हमारे ईश्वरी जीवन के लिए शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। जैसे हम किसी से ईश्वर घृणा करते हैं तो वो शोभा नहीं देता है कि हम किसके बच्चे और किसके प्रति हम घृणा कर रहे हैं, और वो भी बाबा के ही बच्चे हैं और बाबा के बच्चों के प्रति हमारी घृणा है, उनके प्रति ही हमारी नफरत है, तो ये तो हमें बिल्कुल ही अयोग्य है। तो ऐसी कई बातें हैं जिसके लिए बाबा ने कड़े शब्दों में कहा बच्चे इसका दंड मिलेगा आपको। तो मैंने हम समझते कि ये गंदगी अगर हम अपने पास रखेंगे हम दंड के अधिकारी बन जाते हैं, और साथ में अंतिम समय के लिए हमारी जो मदद है बाबा की वो भी हम ले नहीं सकेंगे। तो इस समय पर बाबा ने हमें जो पुरुषार्थ करने के लिए कहा है कि बच्चे सभी के प्रति आपकी शुभ भावना और शुभकामनाओं का जो ये सिलसिला है वह आप अगर चालू रखेंगे तो अपने अंदर की एक तो सफाई होती रहेगी। कोई भी आत्मा कैसी भी हो, जिसको बाबा ने कहा है बच्चे उसके अनादि स्वरूप को, आदि स्वरूप को ही आपको देखना है, वर्तमान स्वरूप को नहीं देखो। तो ये जो अभ्यास से, ये जो प्रैक्टिस से अगर हमारी एक एक ऐसी आत्माओं के प्रति निरंतर चलती रहेंगे तो हमारी सफाई होती रहेगी। तो ये सच्चाई सफाई को साथ लेकर के हम अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर कर सकते हैं, और बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए जैसे भी आज हम देखते हैं कि जब ट्रेन पटरी पर चलती है अगर लाइन क्लियर नहीं होती तो ट्रेन को रोका जाता है, और जब तक क्लियर नहीं होती तब तक उसको रुकना पड़ता है। तो वो ट्रेन अकेली रुकती नहीं है, ट्रेन में जितने प्रवासी होते उतने सारे रुके हुए होते कि चलते हैं, बस सब रुक जाते हैं। तो ये भी बाबा ने हमें कहा है कि अगर आप रुकते हैं तो आपके साथ कितने जन पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपके साथ कितनों के साथ कनेक्शन है, वो सब भी रुक जाते हैं, तो हमारे ऊपर बोझा कितना चढ़ जाएगा। हम रुके तो कितनों को रुकाया हमने पुरुषार्थ के इसमें। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि आपको रुकना न पड़े, क्योंकि आपको बाबा ने गाइड बनाया, इंजन बनाया। हर एक बाबा ने कहा बच्चे अपनी राजधानी बना रहे हो, और हर एक के राजधानी में आने वाले जो है जैसे उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो तो वो ट्रेन अगर रुक जाए तो उस राजधानी में आने वाले, उस राजा के राजधानी में आने वाले सब रुक गए हैं। तो कितना सारा कारोबार बाबा का रुक गया सृष्टि का, तो हमारा रुकना भी बहुत हानिकारक हो जाता है। इसके लिए हमें अपनी आपका पुरुषार्थ कैसा ध्यान से करना है उस पर हमें अटेंशन रखना है कि मेरे कारण इतने बड़े विश्व परिवर्तन के कार्य में कहीं पर रुकावट ना आ जाए। हम बाबा के बच्चे बहुत वैल्यूबल है। एक एक बच्चा, बाबा ने कहा बच्चे इस विश्व परिवर्तन के लिए आधार मुहूर्त है। तो जब हम आधार मुहूर्त बच्चे हैं, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने बहुत सारी दी हुई है, तो उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति के ऊपर भी अटेंशन रखना है। तो साधारण स्थिति में हमको अभी नहीं रहना है, लेकिन हम विशेष आत्माएं हैं तो विशेष पुरुषार्थ करना है और विशेष अपनी हर घड़ी अपनी स्थिति को बनाए रखना है ताकि हम बाबा का कार्य को आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए हमें ये सब बातों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इसके अंदर हमें ये अभ्यास करना है कि जो हमें टचिंग करनी है, टचिंग के पहले हम बाबा के टच में रहें। तो बाबा के टच में रहने के लिए भी हमको अभ्यास करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सारा दिन में हम सवेरे अमृत वेला किया, मुरली सुन ली, जब हम अपने कर्म क्षेत्र में कर्मों में लग जाते हैं, उसके बाद वो सारी बातें, मुरली में सुनी हुई पॉइंट्स हम दिन भर में कितना याद रखते हैं। हम दूसरे दिन अगर उसको रिवाइज करने की बात कहें तो दूसरे दिन तक हमारी बुद्धि में कितनी मुरली याद रहती है। जैसे जयंती दीदी कह रही थी कि रात को सोने के पहले अपने आप को पूछो कि आज सारा दिन की मुरली को मैंने कितना याद रखा। सोने के पहले अपने आप से पूछ लो, कोई मेरे से पूछे ना पूछे, लेकिन मैं ही अपनी स्टडी को देख लूँ ना कि सुबह से लेकर रात तक मैंने कितनी मुरली की बातों को याद रखा, कितना उस बातों का मनन चिंतन किया, कितनी बातें सारा दिन में यूज की, आज जो बाबा ने मुझे कहा उसको मैंने कितना अपने जीवन के अंदर आज यूज किया। तो आज दिया हुआ ये खजाना था, अगर मैंने सारा दिन कुछ भी यूज नहीं किया उसमें से, तो वो तो सारा व्यर्थ गया। बाबा ने दिया लेकिन मैंने अपने जीवन के लिए उसको यूज ही नहीं किया, वो यूज करने के लिए मिला हुआ था। और समय ऐसा एक दिन पूरा हो जाएगा, फिर कहेंगे बाबा कि मैंने तो ये सब कुछ दिया था, और हम कहें कि हमने तो कुछ यूज ही नहीं किया उसको। अगर हमने यूज नहीं किया तो उसके रिजल्ट भी तो नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए हमें ये बातों का ध्यान रखना है कि हम सारे दिन में कितने बार अपने परमधाम घर तक जाते हैं और उस परमधाम निवासी बाबा को टच करते हैं। बुद्धि योग हमारा बार बार बाबा के पास जाए। एक कार्य पूरा हो गया फिर अपने बुद्धि को हम बाबा के पास लेकर के जाए। ऐसे हम निरंतर कुछ समय अपने आप से अभ्यास कराएंगे जिसके लिए हम टच द गॉड, जैसे हम बार बार जा रहे बाबा के पास और बाबा से मिल के आ रहे हैं। और जैसे छोटा बच्चा होता है, कुछ भी हो जाए तो वो सीधा दौड़ के माँ बाप के पास पहुंचता है और सीधा माँ बाप को टच करेगा, अपनी बात को बता देगा और फिर से हल्का हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा आप बच्चों को उतनी भी अक्ल नहीं है, छोटे बच्चे जितनी भी अक्ल नहीं है, आप उस बात को बाबा तक न देते हुए उस बात को आप ही खुद पकड़ के बैठ जाते हैं और हम अपनी अवस्था को उसके कारण नीचे उतार देते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा बनने का भी एक बहुत बड़ा संगम का सुख हमको मिला हुआ है कि हम जो भी बात होती है, किसी बात का हमें दुख होता है, कोई बात की जीवन के अंदर कहीं अपमान होता है, कहीं पर कुछ फीलिंग्स ऐसे आ जाती है, तो हमें एक सेकंड भी देरी न करते हुए हमें तुरंत बाबा के पास अपने आप को ले जाना है और बाबा के सामने जाकर के हम अपने आप को बाबा के सामने, जैसे वो बात संकल्पों से दे दी है, बाबा से उसके रिटर्न में हमने आंसर ले लिया है, बाबा से जवाब ले लिया है और बाबा ने बहुत दुलार देकर, बहुत प्यार देकर के जैसे हमें कहा बच्चे जाओ खेलने के लिए, हम जैसे फिर से अपने पाठ बजाने के लिए फिर से वापस तैयार हो गए, एकदम लाइट अपना मूड फिर से तैयार हो गया। तो ऐसे हमें अपने आप को बार बार अभ्यास करवाना है तो अगर हम दिन भर में कोई भी बैड फीलिंग को लेकर के अगर ज्यादा समय नहीं चल रही है, जिसको बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगा दो, कोई भी बात आती है उसको तुरंत फुल स्टॉप लगा सके। वो फुल स्टॉप लगाने के लिए भी एक बहुत अच्छा ये प्रयोग है कि हम बार बार बाबा को टच करें, बाबा को मिल करके आए, बाबा से दृष्टि लेकर के आए और फिर से हम अपने कार्य के लिए अपने आप को तैयार करें। तो ये प्रयोग हम सारा दिन में कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार हो सकता है हमारे से, उसको हमें अपने चार्ट में नोट करना है कि अच्छा कोई भी बात आई तो क्या उस बात का मनन चिंतन किया मैंने, क्या उस बात का किसी किसी के पास जाकर के वर्णन किया कि ऐसा किसी ने मुझे बोला, ऐसा किसी ने मेरे साथ किया, या इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने वो करना चाहिए था, ये सब बात करने के लिए हमने किसी व्यक्ति को ढूंढा, उसके साथ शेयर किया, फिर उसको सुनाया, उसकी भी उसका भी समय मैंने बर्बाद किया, अपनी अवस्था खराब की तो उसकी भी अवस्था खराब की। तो कई दिनचर्या में हमने इस प्रकार से उतराव चढ़ाव वाले काम तो नहीं किए, लेकिन ये हमें करना ही न पड़े। हमें किसी औरत की अवस्था को खराब करने के लिए हमारी अंदर की जो बातें वो किसी तक ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, सीधा सरल हम बाबा के पास ही चले जाएं। बाबा हम बच्चों के लिए हर संबंधों से बैठे हुए हैं, चाहे उसको माता पिता बना लो, बंधु सखा बना लो, दोस्त बना लो, और उसके सामने हम जाकर के शेयर करते जाएं। तो अभी हमें ये प्रैक्टिस करके हमें अपने आप को इतना लाइट रखना है कि जैसे किसी भी समय पर हमें बाबा कहें बच्चे अभी आ जाओ वतन में, तो हम बाबा के पास जा सके, इतने हमें अपने आप को तैयार रखने का अभ्यास करना है। क्योंकि हम आज देख रहे हैं पूरे साल भर में अगर आप देखेंगे अपने ईश्वरी परिवार के कितने भाई बहनों ने शरीर छोड़ा और अचानक छोड़ा है, कोई अचानक कोई बीमारी ने उनको घेरा है तो भी अचानक ही उनका जाना हुआ है। तो ये जो अचानक का समय चल रहा है, जो बाबा ने कहा था 69 के संदेश में कि एक समय ऐसा आएगा सबके टिकट फटाफट कटेंगे, टिकट कटने का समय आएगा। तो आज हम देख रहे टिकट कट रहे हैं, तो उसमें हमारा टिकट अपना भी टिकट कभी कटने वाला है, तो उसका भी तो कोई पता नहीं हमें कि किसका टिकट कब कटने वाला है। लेकिन ये बाबा के महावाक्य है तो ये जरूर साकार स्वरूप तो लेते ही जा रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय पर हमें समय ये मौका नहीं देगा कि हम संपूर्ण बनेंगे तभी हमारा ये शरीर छूटेगा। हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में भी हमको जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्यों ना हम पहले से ही अपने आप की तैयारी कर करके ऐसी रखें कि हम सदा एवर रेडी रहें। क्योंकि बाबा हमें कह चुके हैं कि बच्चे अचानक और एवर रेडी का पाठ तुम्हें बाबा ने ड्रामा ने पढ़ाया हुआ है। तो जैसे ये ड्रामा ने पाठ पढ़ाया है, तो जैसे ये पाठ हम देख रहे हैं कि बाबा ने तब से शुरू किया है जब हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी जी ने शरीर छोड़ा था, और अचानक के उस समय पर दादी बेंगलोर में भट्टी करा रहे थे और भट्टी कराते कराते ही दादी अचानक चली गई। तो उस समय पर बाबा ने कहा ये अचानक और एवर रेडी का समय, तब से बाबा ने ये टाइटल शुरू किया कि अचानक एवर रेडी। तो हम बच्चों को बाबा बहुत समय से ये पाठ पढ़ा रहे हैं, और ऐसे नहीं कि बाबा ने कल बोला और आज वो पाठ शुरू हो गया, लेकिन जैसे हम देख रहे कि धीरे धीरे दादी जाने के बाद धीरे धीरे उस अचानक एवरेडी के पाठ ने जैसे तेजी करते गए हैं, और आज तो बहुत फास्ट चल रहा है पाठ। लेकिन ऐसे समय के लिए हमें अपनी तैयारी क्या क्या करनी है, तो ईश्वरीय जीवन के अंदर हम तो एक बाबा ने हमें स्लोगन दिया हुआ है कि बच्चे सफल करो और सफलता को पाओ। तो मैं ये भी कार्य हमारा पूरा करना है कि संगमयुग के जो खजाने हैं बाबा से मुझे मिले हुए गए वो मुझे अपने पुरुषार्थ के लिए यूज भी करने हैं, और साथ में इस विश्व कल्याण के कार्य के लिए उसको यूज करना है। तो इसमें मैंने क्या क्या यूज करके उसको सफल किया है, मेरे पास समय का खजाना बाबा ने दिया हुआ है, ज्ञान का खजाना है, गुण का खजाना है, कितनी प्राप्तियों के खजाने बाबा ने दिए गए, किस विश्व परिवर्तन के कार्य में मैंने उन खजानों को प्रयोग में लाया, या ये अपने प्रति ही यूज किया हुआ है या अपने सेवाओं के प्रति भी हमने यूज किया हुआ है। और ये भी बाबा ने कहा समय के पहले आपको करना होगा, इसके लिए भी टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो क्या नहीं बाबा हमें बता चुके हैं, बाबा ने हमें सब इशारे दे दिए हैं। तो ये टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, उसके बाद बाबा ने कहा आपका मैं कुछ भी नहीं स्वीकार करूंगा। तो जब बाबा स्वीकार कर रहा है हम बच्चों का लेकर के, हमें एक का पदम गुणा करके दे रहा है, ये इतनी सुंदर बाबा की ये नॉलेज है, और नॉलेज के साथ विधियां बाबा ने हमें बता दी है, और भाग्य विधाता किस विधि से हमारा भाग्य बना रहा है वो सारी बातें बाबा ने हमें समझा दी है। जब बाबा हमारा इतना सारा भाग्य अनेक जन्मों के लिए इस अल्पकाल की सेवाओं के रिटर्न में दे सकता है, और फिर भी अगर हम अल्पकाल की सेवाओं के लिए भी अब नहीं सोचते हैं तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फिर हम यही कहेंगे कि मेरे पास समय तो बहुत था लेकिन मैंने उस समय पर क्यों नहीं यूज किया। अपने आप से आप प्रश्न पूछोगे, था न समय मेरे पास, इतना घंटा रोज मिलता था तो मैंने उस समय पर क्यों नहीं कोई पुरुषार्थ किया। लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारे इस प्रश्न को समाप्त करने के लिए है। हमें बाबा ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करने की विधियां दे रहे हैं कि जिसमें हम देखें ही सारे दिन में हमारे पास कहां और कब समय मिलता है, वो समय हम कैसे अपने स्वोन्नति के लिए और अन्य आत्माओं के उन्नति के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हर एक के पास समय है लेकिन हमें ढूंढना है वो समय मेरे पास कहां कहां पर है, कब कब है, और कब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे खजाने जो बाबा ने हमें दिए हैं इसको मुझे सफल करना है। ऐसा न हो कि अभी शरीर छूट जाए। रमेश भाई जी ये बात सदा कहते थे, उनका एक बहुत सुंदर किताब है पवित्र धन, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अनुभव लिखे हुए हैं कि कई ऐसे ही सोचते सोचते रह जाते थे और फिर बाद में शरीर छोड़ते थे। फिर भाई जी कहते थे वतन में फिर मैसेज देते हैं कि हमें एक मिनट के लिए टाइम मिले, एक सेकंड के लिए शरीर में आने के लिए टाइम मिले तो हम साइन करके जाएंगे, हमारा ये काम बाकी, पेपर तैयार है हमने साइन नहीं किए। तो ऐसी ऐसी बातें रमेश भाई जी सुनाते थे कि एक सेकंड भी नहीं मिलेगा, अगर आप एक सेकंड का काम भी छोड़ रहे हो ना, एक साइन ही करनी थी आपको, पेपर तैयार थे लेकिन आपने वो साइन करने के लिए भी सोचते रहे नहीं किया और शरीर छूट गया। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उस किताब में उन्होंने लिखे हुए हैं, और भाई जी खुद भी सुनाते थे क्लास में कि कभी भी हमें जो संकल्प आता है, श्रेष्ठ संकल्प जो आता है, वो हमें कैसे तुरंत पूरा करना है। ये एक प्रकार की ईश्वर के तरफ से, नीति के तरफ से दिया हुआ मुझे इशारा होता है, और उस समय पर अगर मैंने वो कार्य अपने आप से करवा लिया होता तो वो भाग्य मेरा कई जन्मों के लिए बन जाता है। लेकिन उस इशारे को उस समय पर हम अनसुना कर देते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और समय की घंटे अपने हिसाब से बजनी है वो बजती है, और तब हम बाबा को रिक्वेस्ट करें, किसको भी रिक्वेस्ट करें तो वो हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा ने भी कहा कि मैं कोई भी आपके नीचे की साकार दुनिया के नियमों के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो जब हम देखते हैं कि जब तक हमारे हाथों में है तब तक हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसके बाद हमें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जैसे ये समय हमारे पास है, हमें जो कुछ भी बाबा से मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, उसको हमें प्राप्त करना है, और बाबा हमें विधियां बता रहे हैं, उस विधि के अनुसार पुरुषार्थ अपने आप से करवा लेना, यही हमारा पुरुषार्थ है। बाकी और हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब तो बाबा दे ही रहा, तैयारी दे रहा है, कुछ अपने आप से करवाना यही है मेहनत। और इसी मेहनत का इतना बड़ा प्रारब्ध एक ही जन्मों तक हम बच्चों को बाबा से मिल रहा है। तो इसके लिए हमें ये बात को सोचना है कि मुझे उस समय के लिए तैयारी उस समय नहीं करनी होगी लेकिन अभी से ही तैयार रहना होगा। तो वो जो मेरी अंतिम समय के लिए जो मुझे टचिंग बाबा से यथार्थ मिलनी चाहिए, उसके लिए अभी से मुझे अपने आप के ऊपर अटेंशन रखना होगा, और अपना सब कुछ सफल करके हमें इतना रेडी रहना होगा कि मुझे कोई भी प्रकार का ऐसा संकल्प उस समय पर न खींचे, न आकर्षित करे कि ये काम बाकी था, वो काम बाकी था, ये भी मैं कर लेती थी तो अच्छा होता था। तो इसलिए आज भी हम देखते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं, कई काम पेंडिंग करके हम योग लगाने के लिए बैठते, कई सेवाएं अधूरी छोड़ के हम योग लगाने के लिए बैठते हैं, फिर वह चाहे अमृत वेला हो, चाहे कोई भी समय का योग हो, फिर हम योग में बैठे बैठे उस सेवा का प्लान बनाना शुरू करते हैं। उस समय पर वो बुद्धि में आता है, अच्छा इनको फोन करना था, इनसे ये काम था, उनसे वो करवाना था, तो ये हमारा बुद्धि योग बाबा से लगने के बजाय कहाँ लग रहा है, सेवा के साथ, व्यक्ति के साथ। और बाबा ने भी इसको योग नहीं कहा है, बाबा ने कहा ये योग नहीं है, योग में आप सेवाओं की कोई बातें सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे, सेवा का प्लान बना रहे हैं, बाबा ने कहा ये योग का सब्जेक्ट नहीं है। योग माना योगी, जिसके अंदर मुझे आत्मा समझना है और शिव बाबा को याद करना है, बाबा के जैसे गुण है, बाबा के जो शक्ति है उसका स्वरूप मुझे अपने आप में अनुभव कराना है, वो मेरा योग का अभ्यास है। लेकिन हम उस समय पर सेवाओं के प्लान बनाते हैं और वो आते हैं उस घड़ी, क्यों आते हैं, क्योंकि हमने उसको अधूरा छोड़ा हुआ है, और अधूरा छोड़ा है और अधूरी बात जो होती वो कहीं ना कहीं योग में हमारे लिए विघ्न रूप बन जाती है। तो इसी प्रकार से अंतिम समय भी हमारे ये अधूरे रहे हुए पुरुषार्थ की जो बातें होंगी, ये हमारे बुद्धि के अंदर उछल खाएंगी, तब हमें वो देहधारियों की किसी प्रकार से यादें आनी शुरू हो जाएगी, कोई धन की बातें होंगी वो याद आएगी। इस प्रकार से कुछ भी साकार दुनिया की बातें अगर हमारे बुद्धि को खींचेंगे तो हम घर जाने के बजाय यहाँ पर ही अपने साथ ही, खुद के साथ ही हम बाबा से दूरी का अनुभव करेंगे। लेकिन ये दूरी हमारी समाप्त तो हो जाए, इसका अभ्यास हमें रोज करना है, रोज एक हमें करना है कि कोई सेवा का प्रभाव भी मेरे ऊपर है। सेवा तो ड्रामानुसार होना है और होनी ही है, अगर हम नहीं भी रहे तो भी सेवा होने वाली है, लेकिन मुझे अपने रहते हुए अपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने उठाई है, जो हमने स्वखुशी से बाबा को मदद देने का वायदा किया हुआ है कि बाबा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम आपके साथ मददगार हैं, तो हम बाबा के कार्य में अपना जो सहयोग दे सकते हैं उसको हमें देने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर हमको मिला हुआ है बाबा की तरफ से, ये अवसर हमें बाद में नहीं मिलने वाला है। तो जो भी हमें चांस मिलता है, जो भी हमें दिखाई देती है सेवाएं, कई बार हम कहते हैं हमको चांस नहीं मिलता है, लेकिन हमको समझ में आता है कि ये समय पर ये सेवाएं दिखाई दे रही है, तो उस समय पर हम खुद ऑफर कर सकते हैं कि इस समय पर ये सेवाएं, तो इसमें हम ये इस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं, और वो सहयोग हम देख करके भी हम उस कार्य में सहयोग अपना देख करके अपना भाग्य बना सकते हैं। तो ये जैसे हम देखें कि मौके ढूंढना हमको है, एक बार किसी ने बाबा को कहा था बाबा मुझे कोई चांस ही नहीं देते हैं, तो बाबा ने कहा चांस दिया नहीं जाता है, चांसलर बनना होता है, आपको लेना होता है, आपको चांस लेना होगा। तो ऐसे हम देखें कि अभी तो बेहद विश्व का कार्य चल रहा है और बेहद विश्व परिवार है अपना, इस परिवार को बेहद का कार्य मिला हुआ है, और उसमें हम कहाँ बैठे हुए हैं, कहीं एक कोने में बैठे हुए हैं, कोई हमें जानता नहीं, कोई हमें पहचानता नहीं है, लेकिन बाबा जानता है, बाबा पहचानता है, तो बाबा की दृष्टि तो मेरे ऊपर है और मेरी दृष्टि बाबा के ऊपर है, और हम बाबा को कह सकते हैं कि बाबा आपने मुझे जब चुना हुआ है, अपना बनाया है, तो आप तो मेरा पूरा एक ही जन्मों का वर्षा देने के लिए मुझे अपना बनाया है, तो जरूर है आप मुझे ऐसे सेवा के लिए जरूर यूज करो जिसमें मेरा भाग्य एक ही जन्मों के लिए बन जाए, और अपना खुला पोतामेल बाबा के सामने रख दो, बाबा ये मेरा समय है, ये मेरा परिस्थितियों के साथ ये हमारा समय वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है, जो भी है, जो बचत हो रहा है वो समय, धन कितना है मेरे पास, ये धन के कारोबार मेरे किस प्रकार से चल रही है, इसमें मेरे पास कितना धन एक्स्ट्रा है, सारा ही पोता मिल, जैसे साकार में बाबा के पास बच्चों का पोता मिल जाता था, वैसे हम बाबा के पास वतन में बैठ करके अपना सारा पोता मिल बाबा के सामने रखें कि बाबा मेरे पास ये सब कुछ है जिसको आप ईश्वरी सेवा के अंदर आप आराम से लगा लीजिए। ये जब हम ऑफर करते बाबा के पास तो बाबा हमें सेवा के मौके जरूर देता है। अगर हमारा पोतामेली बाबा के पास गया नहीं है तो बाबा को कैसे पता चलेगा कि बच्चे के पास क्या है। और बाबा ने कहा, मैं कभी भी किसी के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ। बाबा ने किसी बच्चे को कहा था कि बच्चे ठीक है, उसके पास भरपूर धन था तो बाबा ने उसको लगा संकल्प आया कि कोई ऐसा प्रोग्राम है तो हमको कहा जाएगा धन दो। बाबा ने कहा कि बच्चे नहीं, तुम्हारा धन तुम्हारे पास ही रखो, क्योंकि बाबा को पता था इस बच्चे का मन मनहूस है, कंजूस है और ये बच्चा पहले से डर रहा है। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे अपना धन अपने पास ही रखो। तो बाबा को किसी का कुछ चाहिए नहीं। बाबा कहता, बच्चे आप जब तक नहीं कहोगे कि ये सेवा में लगाओ तब तक मैं आपके किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, आपके समय का भी सदुपयोग बाबा नहीं करवाएगा। लेकिन जो कुछ है अगर वो बाबा के सामने हम क्लियर रख रहे हैं, सच्चाई से रख रहे हैं, तो जरूर है बाबा हमें ऐसे सुंदर मौके दे सकता है और जिसके द्वारा हमारा एक ही जन्मों का बहुत अच्छा भाग्य बाबा बना सकता है। तो ये भी एक टची हमें समय के अनुसार अपने भाग्य बनाने के लिए भी बाबा के द्वारा मिल सकती है। और ये टची कैच करने के लिए भी हमारी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। क्योंकि अगर समझो मुझे मेरे पास कुछ धन पड़ा है और मुझे उसको सफल करने का संकल्प भी है और मैंने बाबा को कहा भी कि बाबा मुझे ये सफल करना है, लेकिन किसी समय पर बाबा ने मुझे टच भी करवाया कि बच्चे ये मौका बहुत अच्छा है, इस समय पर आप सफल कर सकते हो, लेकिन अगर उस समय पर कहीं पर भी अंदर में बाबा ने कहा सूक्ष्म में भी कोई विकारों का अंश रह गया हो, जैसे अंदर मोह का कीड़ा ही रह गया होगा, थोड़ा सा मोह अंश मात्र में कहीं रह गया होगा, तो जैसे ये टचिंग होंगी कि इसको सफल करना, वैसे ही मोह जागृत हो जाएगा कि नहीं ये भी तो है ना, ये भी कार्य है, ये भी है, तो इनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा, इनके लिए भी तो रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मोह इमर्ज हो जाएगा तो हमारा संकल्प वो ढीला हो जाएगा।
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज।
Thank you.
चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
तो जैसे टच भी हुआ, हमने उस बात को कैचिंग भी किया, और फिर हमारे अंदर का जो संस्कार था या हमारे अंदर जो सूक्ष्म विकार थे, उन्होंने उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। तो फिर रिजल्ट में क्या निकलता है कि हमको करना तो था लेकिन दूसरा संकल्प उसके अपोजिट चलता है, और फिर हमारे पुरुषार्थ में प्रभाव पड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि अपनी सूक्ष्म कमियां भी ऐसी है, सूक्ष्म विकार भी ऐसे हैं, जो कई बार हमें संपन्न बनने में, पुरुषार्थ करने में, सब कुछ मिलने के बाद भी हम उसको परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सूक्ष्म चीजों को हमें अपने जीवन के अंदर से निकाल देना है, उसके लिए हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो हमें टचिंग के बाद कैचिंग हमें ये करना है, लेकिन हम कैच करने के बाद जो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी हमारे पुराने संस्कार या कुछ बातें हैं जिसके कारण हम उसको संपूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए तीसरी बात है कि हमें उसको मैच करना है। तो मैच हम किसके साथ करेंगे? तो वो बात, वो संकल्प को हम ब्रह्मा बाप के जीवन के साथ मैच करें कि अच्छा, बाबा ने इस सब्जेक्ट में क्या पुरुषार्थ किया था, बाबा ने इस सिचुएशन में क्या पुरुषार्थ किया था। तो जो बाबा की बातें अगर हम अपने जीवन में सामने रखते हैं तो हमें याद आता है तुरंत कि बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। तो बाबा की जैसे ये धारणा थी, वैसे अगर उस समय पर हम अपने आप को उस स्थिति में बाबा के साथ मैच करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उस समय पर अपने आप को सफल बना सकते हैं, हम अपने पुरुषार्थ में अपने आप को दो कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से पूरे साल भर इस प्रोजेक्ट को लेकर के पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखना है कि कैसे हमें अपने आप को बाबा के समीप जाकर के टचिंग भी, टच में भी हम तभी रहेंगे जब ज्यादा समीप रहने का पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा ने कहा ना, समीपता के लिए भी हमें समान तो बनना ही होता है, अगर हम समान नहीं रहते, अंतर होता है तो हम दूर रहते हैं। जैसे हम कहते नहीं ये तो बहुत बड़े हैं, उनके समीप कैसे जाएं, तो हम कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन जब समान बनते हैं तो हम इजीली आपस में मिलते हैं। तो ऐसे हमारी स्थिति को भी हमें समीपता में बाबा के समीप लाना है। जैसे बाबा ने कहा साकार और निराकार, साकार बाबा जैसे भी अव्यक्त रूप में है, तो उस अव्यक्त स्थिति में हमें अपने आप को बार बार ले जाने का अभ्यास करना है। जैसे हम अभी पूरे साल भर अभ्यास कर रहे थे व्यक्त से अव्यक्त की ओर, तो हम व्यक्त में रहते हुए भी हम अपने अव्यक्त स्थिति की ओर अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये अव्यक्त स्थिति का अभ्यास हमें बाप समान बनाने के लिए या बाबा के समीप रहने के लिए मदद करता है। तो जैसे हम ये समीप ज्यादा से ज्यादा निरंतर कितना समय हम रह सक रहे हैं, तो ये अभ्यास अगर हम करते हैं, इसका हिसाब निकालते हैं कि कितना समय हम समीप रहते, कितना समय हम बाबा से दूर रहते हैं, ये भी हम अपने अंदर फील करें समीपता की क्या फीलिंग्स होती है, हम बाबा के बहुत नजदीक हैं। जैसे हम कुछ समय के लिए दादियों के नजदीक आते हैं तो भी हमें बेहद खुशी होती है। दादियां तो व्यक्त में हैं, व्यक्त में उनसे मिलना जितना भी इस ड्रामा में सहज हुआ, पॉसिबल हुआ हमारे जीवन के अंदर, हम उन क्षणों को भी याद करते हैं और अभी भी खुशियां मनाते हैं कि अच्छा हम इतने दादी के समीप आए थे, हम इतना दादी से मिले थे। तो जैसे वो दिन आज भी हमें खुशी दिलाते हैं, तो आज हमारे पास वो समय है कि हम बाबा के समीप अनुभव करें अपने आप को, और ये बाबा के समीपता के अनुभव हर एक को जितने चाहे उतना करने का खुला निमंत्रण है। बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे मैंने वतन आपके लिए खुला रखा हुआ है, आपको यहाँ कोई भी पाबंदी नहीं है, आपको यहाँ कोई नहीं कहेगा कि समय पूरा हो गया या आपका टर्न नहीं है, अभी अभी आपको यहाँ वतन में नहीं बैठना है, ये किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी वहां पर नहीं है और वतन हमारे लिए सदा सदा के लिए खुला रखा है बाबा ने। और ये सूक्ष्म वतन विशेष बाबा ने संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ही तैयार किया हुआ है, तो क्यों ना उस वतन में अव्यक्त रूप से हमें अपने अव्यक्त स्थिति के द्वारा बाबा से मिलन बनाने का ये परम सुख का परम आनंद का समय जो हमको मिला हुआ है, तो हम अपना एक बसेरा ही वतन में बना लेवे। जैसे दादी जानकी जी अपने अनुभव भी सुनाते थे कि मैं रोज रात को वतन में चली जाती हूँ, वतन में मैंने अपनी एक खटिया रखी हुई है तो मैं वहां जाकर सो जाती हूँ। तो जब दादियों ने अपना घर कहाँ बनाया था, वतन ही बनाया था, जब सोना था तो वतन में जाते थे, खाना था तो बाबा के साथ वतन में बैठ के खाते थे। तो जब दिन और रात उन्होंने वतन को ही अपना घर बनाया था तभी तो वो वतनवासी हमें अनुभव भी कराते थे। सहज रीति से उनके अवस्था के द्वारा भी हम देखते थे, उनके दृष्टि हमें अव्यक्त बनाती थी। तो वो स्थिति जो दादियों ने बनाई है हम सभी ने आंखों के सामने देखा है कैसे दादियों ने पुरुषार्थ किया है। भले बाबा को मम्मा को सभी ने नहीं देखा है लेकिन दादियों को तो देखा है पुरुषार्थ करते हुए। तो जो हम देखे कि हम क्यों नहीं वैसे कर पाते हैं, हम क्यों अपने बिस्तर पर सोते, हम क्यों बाबा के वतन में जाकर के रोज क्यों नहीं सोते हैं, तो इस प्रकार से अगर हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम अपनी स्थिति की तरफ चले जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में मैं बहुत अच्छी रीति से इसको कैसे सारे साल भर चलाना है वो हमारे आगे तनुजा दीदी जी आपको क्लियर करेगी कि इसका किस प्रकार से अभ्यास हमारा रहेगा। और आज तो सिर्फ हमें मैंने कुछ अपने ही विचार आपके चिंतन अपना बताया लेकिन इसका बहुत पूरे साल भर हमें अभ्यास करना है किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को हमें साथ में लेकर के अपना पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार आदरणीय अलका दीदी जी का, सभी एक हाथ की ताली से दीदी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर विषय दीदी ने हम सबके बीच में रखा और एक बहुत सुंदर लिंक के साथ कि कैसे अंतिम समय आएगा और उसमें टचिंग कैचिंग और मैचिंग कैसे करना है, तो उसके बहुत सुंदर टिप्स दीदी ने हम सबको दिए। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और हम सभी जरूर इस प्रोजेक्ट में भाग लेंगे और बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। अभी हम सबके मध्य आदरणीय तनुजा दीदी पहुंचे हैं जो ऐसे विषयों को बहुत ही क्रिएटिव और रमणीक बनाते हैं। तो हम अभी दीदी जी से सुनेंगे, तनुजा दीदी जी से, कि इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है।
ओम शांति। समय के अनुसार जो बाबा ने इस प्रोजेक्ट की टचिंग की है, क्योंकि अंतिम समय अभी आ ही चुका है, हम सभी देखते हैं परिस्थितियां हर रीति से जोर कर रही है, अपने भी हिसाब किताब सामने आते हैं पूरे करने हैं, तो हर चीज के लिए बाबा ने एक ही उपाय जो हर मुरली में आता है, एक भी मुरली ऐसी नहीं है जिसमें बाबा की याद का ना हो, है ना। कितने सालों से रोज रोज बाबा ये विषय पक्का कराते हैं क्योंकि हम सभी को बाबा की जो मदद चाहिए हम लेते भी हैं चाहते भी हैं, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारे विकर्म भी जल्दी विनाश होंगे, हर रीति से अंतिम समय के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो ये विषय ऐसे ही समय अनुसार बाबा ने टच किया कि याद एक ऐसा विषय है जो सबसे सहज भी है और सबसे कठिन भी है। तो अगर हम योग युक्त रहने का या ज्वालामुखी योग या आत्माभिमानी स्थिति, ऐसे शब्द रोज ही सुनते हैं और सुन करके थोड़ा सा भारी हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। तो उसको करने के लिए अगर हम उसको सहज तरीके से कुछ बनाते हैं तो करने में अच्छा होता है, खुशी से करते हैं। तो ये एक मुझे बहुत समय से ऐसे विचार आता था कि हम बहुत सारे टॉपिक लेते हैं लेकिन ये एक लास्ट का टॉपिक ऐसा है जो हर सेंटर में हर बाबा के बच्चे को बहुत 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 जरूरी है। आप सबको लगता है जरूरी है, तो हम किस तरह से, हम जितना चाहते हैं हम योगयुक्त रहे, बाबा के टच में रहे, उतने कारोबार का विस्तार, इतने काम, इतनी सेवा और कई प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। तो जितना हम चाहते हैं उतना और ज्यादा विस्तार में बुद्धि चली जाती है। तो अभी इसको सहज कैसे करें और रमणीकता से कैसे करें, खुशी से कैसे करें, तो हम बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे कि पूरे साल भर में, जैसे बाबा कहते हैं ना, बहुत काल की प्रैक्टिस, अगर हम कहेंगे उस समय हो जाएगा तो नहीं होगा, तो बहुत काल, हम एक साल तो कम से कम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे कि हम कंटिन्यू बाबा के टच में रहे। कितनी भी माया आए, परीक्षा आए, परिस्थिति आए मन को हटाने की, तो ऐसे कुछ विधियां टेक्निक्स हम निकालेंगे जो सहज भी हो, करने लायक भी हो, सभी खुशी से भी करें। तो ऐसे कुछ प्लान करेंगे, तो जितने ज्यादा से ज्यादा इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में भाग लेंगे उतना ज्यादा सभी को योग का फायदा होगा। तो इसमें जैसे आज सुबह भी हमने किया, जो हार्ट वाला प्रयोग किया, तो हमारे दिल में जो है बाबा इतना बसा हुआ हो कि एक इमोशनली भी होता है, सभी सुबह इमोशनल हो गए थे, हम देख रहे थे कि सभी को जैसे दिल की आवाज सुनाई दे रही थी, है ना। तो ऐसे लॉजिकल भी हो, इमोशनली भी हो, और हम रिसर्च बेस में कर रहे हैं, कोई भी हम यहाँ जो टॉपिक लेते हैं वो थोड़ा मूल्यांकन के हिसाब से हो, क्योंकि हम रिसर्च बेस में कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ चार्ट वगैरह भी बनाएंगे, लेकिन चार्ट भी कुछ नए ढंग से बनाएंगे ताकि सबको खुशी से करने के लिए मजा आएगा। तो इसमें जैसे दीदी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई कि अंत के समय पर कोई भी साधन काम नहीं आएंगे, तो उस समय जो बाबा की टचिंग मिलेगी उसमें हमारी सेफ्टी है। तो जैसे साधन मोबाइल है या कई चीजें है, कई सूचनाएं हैं, बाबा ने कई बार मुरली में ये भी बताया है कि अंतिम गाड़ी, उसका भी टचिंग होगा, और कई सोचेंगे कि हम इसको बोल दे, उसको बोल दे, वो अकेले रह जाएंगे, उनको भी लेके चले तो फिर हम भी रह जाएंगे। क्यों हम रह जाएंगे? टच बाबा ने हमको किया, हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए रुक रहे हैं। अगर उसको ले जाना होता तो बाबा उसको नहीं टच करता। तो इसीलिए वो जो टचिंग है वो, उसकी भी तैयारी होती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो। जैसे वायरलेस सेट होता है तो अंत में, तो जैसे हैम रेडियो वगैरह है, आपातकालीन सेवा में वो यूज होता है, तो वो आगे चल के तो वो भी नहीं चलेगा। तो जो टचिंग का बाबा ने जो बताया है ये अंतिम समय के लिए बहुत बहुत काम की चीज है, तो उसकी तैयारी हम अभी से करें, करना चाहिए था बहुत समय से, कई कर भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा विधिवत हम सब मिलकर के कुछ अच्छा ठोस निकालेंगे जिससे करना सबको सहज होगा। तो बाबा के टच में रहना, इसका अर्थ ये नहीं कि हमको सारा दिन योग में बैठे रहना है। जो भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे, झाड़ू लगा रहे, भाषण कर रहे, कंप्यूटर में काम कर रहे, जो भी कर्म है उसमें एक लाइन, हार्ट में, दिल में एक तार जो है वो बाबा से कैसे जुड़ी रहे, माना स्वतः ही याद कैसे आए, वो है टच करना। फिर दूसरा, परम धाम में घड़ी घड़ी जाकर के टच करके आना। तो दिन में कितने बार करते हैं उसका भी हम कुछ कंपटीशन रखेंगे, कुछ क्रिएटिव अच्छी विधि निकालेंगे, और उसके बाद 3 मास टचिंग का रखेंगे, 3 मास कैचिंग का रखेंगे, और उसके बाद 3 महीने जो है बाप समान बाबा को मैच करना। कि बाबा अगर शांति का सागर है तो हमारे में कितनी शांति आई है, बाबा प्यार का सागर है तो मैं कितना प्यार का सागर बनी हूँ या स्वरूप बनी हूँ। तो वो 3 महीने जो है हम मूल्यांकन करेंगे बाप समान बनने का, क्योंकि टचिंग में क्या होगा, टचिंग में ये है कि बाबा के पास बहुत सारी शक्तियां, गुण, ज्ञान है, तो टच करने के बाद वो सब हमारे अंदर आएगा, कैच होगा और फिर मैच होगा। तो इस प्रकार से आप सभी भी इस विषय में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि सभी को एक ही लक्ष्य है कि हमको बाप समान भी बनना है, अंतिम समय के लिए आत्मा को मजबूत बनाना है, तैयार करना है, ठीक है ना। सभी इंटरेस्टेड है, तो हम सब मिलकर के इस प्रोजेक्ट को बहुत सुंदर बनाएंगे, सारे यज्ञ के लिए काम आए इस प्रकार से कुछ हम बनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जब ये क्लास शुरू हुआ तो आदरणीय अलका दीदी ने कहा कि हमें अचानक ही टॉपिक मिला ये वाला, लेकिन दीदी जी की क्लास और तनुजा दीदी ने जो प्लानिंग बनाया है उसे देख के लगता है, दीदी की क्लास सुनी तो ऐसे लगता है कि अचानक दीदी को टॉपिक मिला, ऐसे लगता है कि अंतिम समय मिला, लेकिन फिर भी बाबा ने आपको टचिंग कराई, कैचिंग कराई और क्या हुआ साथ में, मैचिंग भी कराई। तो दोनों दीदियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, है ना। इतने सुंदर प्रोजेक्ट, ऐसे तो हम सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर करते हैं तो एक बहुत लिंक बन जाती है पुरुषार्थ की। भी कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स हैं। स्पार्क विंग की मेंबर